आज है 14 जनवरी दिन गुरुवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूँ सुशीला सिंह। भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बैठक को लेकर अनिश्चितता जारी। पठानकोट हमलों के बाद पाकिस्तान ने की कार्रवाई, एक विशेष जांच टीम जाएगी पठानकोट।
जो भी कार्रवाई पाकिस्तान ने किया है दबाव पर किया है, खासतौर पर अमेरिका, क्योंकि पिछले 3 दिनों में उन्होंने सैनिक सहयोग पर रुकावट डाल दी, आर्थिक सहयोग पर रुकावट डाल दी है।
सुप्रीम कोर्ट के जलीकट पर रोक हटाने से इनकार, तो राज्य में इस मुद्दे पर शुरू हुई राजनीति। और मकर संक्रांति के दिन क्यों लोग पसंद करते हैं खिचड़ी खाना?
देखिए, मुझे लगता है कि अगर भारत में कोई एक खाने का व्यंजन है, सार्वभौमिक है और चल सनातन है, तो वो खिचड़ी ही है।
लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। भारत पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बातचीत पर भारत ने बुधवार को भी रुख साफ नहीं किया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पेरिस से लौटने के बाद इस पर कोई फैसला किया जा सकता है। पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर की गिरफ्तारी की खबरों के बाद भारत ने इस मसले पर कोई भी फैसला लेना आज तक के लिए टाल दिया था। वेनेजुएला में पिछले महीने चुनाव में गड़बड़ी के मामले में फंसे 3 विपक्षी सांसद संसद से इस्तीफा देने के लिए राजी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब तक ये तीनों सांसद इस्तीफा नहीं देंगे तब तक संसद का कोई कामकाज मान्य नहीं होगा। संसद में ये 3 सीटें चले जाने से विपक्ष 2/3 बहुमत खो बैठेगा और बहुमत होने की सूरत में विपक्ष संविधान में बदलाव कर सुप्रीम कोर्ट के नए जज चुन सकता है। विपक्ष के सांसद सिमोन काल्जाडीला ने कहा कि सरकार को देश को पटरी पर लाने के लिए विपक्ष का साथ देना चाहिए।
Vemos a un gobierno en vez de estar concentrado dialogando y llamando a todos los sectores del país।
हम देख रहे हैं कि सरकार इस बात पर ध्यान देने के बजाय कि सभी क्षेत्रों में बातचीत की जाए, इस पर सरकार का ध्यान है कि हम कैसे इन मुश्किल हालात से निकलेंगे। सरकार लोगों की राय को समझ नहीं रही है। ये थे सिमोन काल्जाडीला के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत पिछले 12 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत $30 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। अमेरिका के तेल भंडार के बढ़ने की खबर के बाद तेल की कीमत में ये गिरावट देखी गई। जून 2014 से ही तेल की कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है। इसे अमरीका में उत्पादन में बढ़ोतरी और चीन में तेल की मांग में कमी के संकेत के रूप में देखा जाता है। तेल की कीमत में गिरावट की खबर से अमरीका में शेयर बाजार करीब 2% गिर गए हैं। फ्रांस के एल्प्स पर्वतों में भूस्खलन में फ्रांस के 2 स्कूली छात्र और यूक्रेन के 1 पर्यटक की मौत हो गई है। ये लोग उस ढलान पर स्कीइंग कर रहे थे जो कि सुरक्षित नहीं होने के कारण बंद किया गया था। मारे गए छात्र अपने स्कूल शिक्षकों और अन्य छात्रों के साथ एल्प्स के पर्वतों पर स्कीइंग का मजा लेने के लिए पहुंचे थे। राहत दल ने बचाव हेलीकॉप्टरों की मदद से सभी पर्यटकों को ढूंढ लिया है। कुवैत में शिया मुस्लिम सांसदों ने शिया और बहुसंख्यक सुन्नी मुस्लिम समुदायों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार को कुवैत में बड़ी संख्या में शिया मुसलमानों पर सामूहिक रूप से एक मामला चलाया गया जिसमें 2 शिया मुसलमानों को फांसी की सजा सुनाई गई जबकि कई लोगों को जेल की सजा दी गई, जिसके बाद शिया सांसदों ने ये सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बीच बातचीत हुई, लेकिन भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच होने वाली बातचीत पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के दौरे के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। सीधा चलते हैं हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव के पास। नितिन, ये बताइए कि इस बैठक में विदेश सचिव भी मौजूद थे, मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि आज फैसला हो सकता है, क्या हुआ होगा इस बैठक में?
ज्यादातर जो जैसा कि हम लोगों ने कल भी इस बारे में चर्चा की थी कल सुबह के कार्यक्रम में कि इस पूरी प्रक्रिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ही फैसला लेंगे, लेकिन विदेश मंत्री और विदेश सचिव ने प्रधानमंत्री को जरूर इस बारे में इस बात से रूबरू कराया होगा कि कल जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स हुए हैं दिन में, اور وہ ڈیولپمنٹ یہ تھے کہ وہاں پر نواز شریف نے خود ایک ہائی انٹیلیجنس کمیٹی کی میٹنگ کی اور اس میں تمام انہوں نے جو 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 اسٹیپس لے رہے ہیں ان کے مطابق چرم پنتھیوں کو یا اس طرح کے جو گٹوں کو کو رین ان کرنے میں کو تھامنے میں اس پر چرچا ہوئی ہوگی. لیکن جو ایک سب سے ضروری بات ہے کل کی پوری اس چرچا کے دوران وہ یہ ہے کہ جو وکاس سوروپ جو ایم ای اے کے اسپوکس مین ہیں, پروکتا ہیں بھارتی ودیش منترالے کے, ان کا جو بیان آیا کہ ابھی تک پاکستان سرکار کی طرف سے یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ جیش محمد کے جو پرمکھ ہیں مولانا مسعود اظہر اور ان کو اور ان کے بھائی کی کا ڈیٹینشن ان کو ابھی پکڑا گیا ہے یا نہیں, ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے کہ نہیں کی جا رہی ہے. حالانکہ پاکستان سرکار کا جو بیان تھا اس میں یہ ضرور تھا کہ جیش محمد کے کچھ لوگوں کو جو سے پوچھ تاچھ جاری ہے.
جی, یہاں یہ جاننا چاہیں گے کہ اب بس ایک دن رہ گیا ہے اور پاکستان نے جس طرح کے قدم اٹھائے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان سے اسلام آباد سے بی بی سی اردو سیوا کی سنواداتا حمیرہ بھی جڑی ہوئی ہیں, لیکن آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ پاکستان نے جس طرح سے قدم اٹھائے ہیں آگے اب کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟
سوشیلا, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آج جو دن ہونے والا, آج کافی انٹرسٹنگ دن ہونے والا ہے, کیونکہ آج دوپہر میں جو بھارت کے جو این ایس اے ہیں راشٹریہ سرکشا صلاح کار اجیت ڈوال, وہ بتایا جا رہا ہے کہ پیرس گئے ہیں اور پیرس سے دوپہر میں آنے والے ہیں. یہ تھوڑا عجیب سی بات بھی لگتی ہے, کیونکہ اتنے اہم موقع پر جب خود اجیت ڈوال کم سے کم پاکستان اور نیپال کو لے کر جو ودیش نیتی رہی ہے اس میں خاصا دخل رہا ہے ان کا پچھلے ایک سال سے, اور وہ اتنے اہم موقع پر پیرس ہی کیوں گئے؟ اور مطلب وہ کاریکرم کیا رد نہیں ہو سکتا تھا؟ ایک تو بات یہ کہ دراصل وہ پیرس گئے ہیں یا کہیں اور گئے ہیں یا کس سے مل رہے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا. دوسری بات یہ وہ دوپہر میں آج لوٹنے والے ہیں, اس کے بعد ان کی سیدھے پردھان منتری سے ملاقات ہوں گی, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے ترنت بعد شام کو 4 بجے تک یہ گھوشنا کر دے گی بھارت سرکار کی وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے. لیکن اس کے پہلے ایک اور اہم چیز اس پر سب کی نظر رہے گی, وہ یہ رہے گی کہ ایک آدھیکارک پاکستان کی طرف سے اگر بیان آ جاتا ہے کہ جیش محمد کے خفیہ مولانا مسعود اظہر کو بھی ڈیٹین کیا گیا ہے, تو پھر یہ بات چیت ضرور ہوگی.
جی, تو آج انتم فیصلہ لے سکتی ہے بھارت اور پاکستان کے ودیش سچیووں کو لے کر بھارت سرکار. اور ادھر بہت بہت دھنیواد آپ کا نتن شریواستو اس جانکاری کے لیے. اور جیسا کہ نتن ذکر کر رہے تھے, ادھر پاکستان میں کل پردھان منتری نواز شریف کی ادھیکشتا میں بیٹھک ہوئی جس میں سینا پرمکھ راحیل شریف اور کئی بڑے ادھیکاریوں نے بھاگ لیا. پاکستان نے اس پر جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ اسے بھارت نے پٹھانکوٹ حملے سے جڑے جو ثبوت دیے گئے ہیں اس کے آدھار پر جانچ شروع کر دی ہے. وہیں اس سلسلے میں چرم پنتھی سنگھٹن جیش محمد سے سمبندھت لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا اور سنگھٹن کے دفتروں کو سیل بھی کیا جا رہا ہے. پاکستان سرکار کی طرف سے جاری کی گئی وگیپتی میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک وشیش جانچ دل پٹھانکوٹ وہ بھیجنا چاہتے ہیں. سیدھے چلتے ہیں اسلام آباد بی بی سی سنواداتا ہمیرا کول کے پاس. ہمیرا, آپ پوری بات چیت سن رہی تھیں, نتن شریواستو ہمارے جو سہیوگی ہیں بات کر رہے تھے, یہ بتائیے کہ کیا کیا کہا گیا ہے پاکستان سرکار کی طرف سے؟
پاکستان سرکار کی طرف سے جس بات کو ریپیٹ کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنی سرزمین کو کہیں بھی دہشت گردی کے خلاف جو ہے استعمال نہیں ہونے دیں گے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی خبر اس کے اندر تھی کہ پہلی بار جیش محمد کے حوالے سے بتایا گیا کہ اہم پیش رفت ہوئی ہے جو بھارت نے ہمیں جو بھی ثبوت دیے ہیں ان کے حوالے سے, اور جیش محمد کے دفاتر کو سیل کیا گیا ہے اور ان کے بہت سے اس تنظیم سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. پہلی جو یہ جو میٹنگ ہوئی تھی دوپہر کے وقت ہوئی تھی, پاکستانی وقت کے مطابق 2 بجے ہمیں یہ اس میٹنگ کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس جو ہے وہ وزیراعظم کی سربراہی میں ہوا, اور اس میں یہ انڈیکیشن دی گئی تھی کہ پٹھانکوٹ جو ہے پاکستان کی انویسٹیگیشن ٹیم جائے گی تاکہ جو ہے, لیکن اس میں ہمیں بھارتی حکومت کی کنسلٹیشن ان کی مشاورت کے بعد ہوگا. اب اس کے بعد 6-7 گھنٹے کے بعد پاکستانی وزیراعظم کے دفتر سے ایک اور بیان آیا, اور اس کے اندر اس ٹیم کا بھی بتایا گیا ہمیں کہ کون سی ٹیم ہے جو تحقیقاتی ٹیم ہے, کن افراد پر مشتمل ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ ان الزامات کی تحقیقات کرے گی 6 رکنی یہ ٹیم ہے جس کے اندر صوبہ پنجاب کے محکمہ انسداد دہشت گردی سی ٹی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی رائے طاہر کو اس کا کنوینئر مقرر کیا گیا. اس کے علاوہ اس کمیٹی میں پاکستان کے خفیہ اداروں ملٹری انٹیلیجنس کے لیفٹیننٹ کرنل عرفان مرزا، آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر نعمان سعید، ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو عظیم ارشد، ڈائریکٹر وفاقی تحقیقاتی ادارہ ایف آئی اے لاہور ڈاکٹر عثمان انور اور ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا صلاح الدین خٹک جو ہیں، یہ چھ افراد جو ہیں اس تحقیقاتی ٹیم میں شامل ہیں. لیکن اس بیان میں جیسے کہ نیتن نے بھی بتایا، اس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ مولانا مسعود اظہر جن پر بھارتی حکومت کی جانب سے الزام عائد کیا گیا ہے، ان کو آیا اس میں گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا.
جی، ایسی میڈیا میں بھی کل دن بھر چرچا چلتی رہی کہ جو جیش محمد چرم پنتھی سنگٹھن کے پرمکھ ہیں چیف مولانا مسعود، ان کی گرفتاری ہو گئی ہے. آپ ہمارے ساتھ بنی رہے ہوں میرا. تو پاکستان سرکار نے بھارت سے ملے ثبوتوں کے آدھار پر قدم تو اٹھائے ہیں. ہمارے سہیوگی روہت جوشی نے پاکستان میں راجدوت رہ چکے جی پارتھ سارتھی سے بات کی اور پوچھا کہ پاکستان میں ہو رہی ان کاروائیوں کا کیا مطلب نکالا جائے.
دیکھیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو بھی کاروائی اب پاکستان نے کیا ہے دباؤ پر کیا ہے، خاص طور پر امریکہ سے، کیونکہ پچھلے تین دنوں میں انہوں نے سینک سہیوگ پر رکاوٹ ڈال دی، آرتھک سہیوگ پر رکاوٹ ڈال دی ہے امریکن سانسد نے. اس کے علاوہ آپ نے اوباما صاحب کو سنا جب انہوں نے کہا کہ اسلامی جگت میں پاکستان اور افغانستان بھی آتنکواد اور ہنسا سے پریرت رہیں گے. تو یہ سب وہ جانتے ہیں کہ اب انتراشٹریہ دباؤ بھی آ رہا ہے اس گھٹنے پر. تو میں سمجھتا ہوں جو بھی انہوں نے کیا ہے اس کا ایک مہتوپورن کارن ہے یہ انتراشٹریہ دباؤ. اور دوسری بات، ہمارے پردھان منتری کے وہاں جانے کے بعد اس طرح کے جو گھٹنا گھٹی ہے وہ ان کو ان کے دیش کو کوئی شوبھا تو نہیں دیتی. تو دباؤ سے کیا گیا ہے اور کیا کیا ہے انہوں نے، کسی کو گرفتار تو نہیں کیا ہے. مولانا مسعود اظہر کو پوچھ تاچھ کے لیے اسلام آباد بلایا گیا ہے اور اسے وہ کسٹوڈیل انٹروگیشن کہتے ہیں. وہ اس کو کسی کو نظر بند کرنا یا جیل میں ڈالنا تو نہیں مانا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، کچھ کاروائی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے، لیکن ہمیں بڑی سوچ سمجھ کر اس پر نریکشن کرنا پڑے گا. ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا رہے گا اگر راشٹریہ سرکشا صلاح کار پھر ملے تاکہ ہم یہ بیٹھ کر طے کر لیں کہ کس سمے سیما پر وہ کیا کاروائی کریں گے. یہ نہیں کہ ہر چھ دن نئے ثبوت مانگیں اور پھر کہیں جو آپ ثبوت آپ نے دیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. تو ان چیزوں پر غور سے بات کر کے اس کے بعد ضرور بات چیت کی پرکریا پر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں.
ادھر بھارت سرکار کی طرف سے بھی جو رسپانس آ رہا ہے اس میں بار بار دکھائی دے رہا ہے کہ وہ پاکستان جو افورڈ کر رہا ہے اس بار اس سے وہ کافی سنتوشٹی دکھائی دے رہی ہے بھارتیہ نیتاؤں کے بیانوں میں بھی.
نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نرنے نہیں لیا گیا ہے، دیکھتے ہیں کیا نرنے لیتے ہیں. اگر انہوں نے یہ نرنے لیا کہ بات چیت کی پرکریا جو نئی بات چیت کی پرکریا کو روپ دینے کے لیے ودیش سچیو اسلام آباد جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ ان کا نرنے ہے، سوچ سمجھ کر انہوں نے کیا ہے. لیکن میری رائے یہ ہے کہ کچھ سیم برتنی چاہیے ہمیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بات چیت کے دور پر ہم نہیں اتریں، لیکن سوچ سمجھ کر اتریں اور یہ سپشٹیکرن پانے کے بعد ہم کریں کہ کس طرح کے ثبوت چاہتے ہیں اور کس طرح کے کاروائی وہ کر چاہتے ہیں. کیونکہ ممبئی حملے کے بعد انہوں نے بہت ہمیں آشواسن دی لیکن کچھ بات بنی نہیں.
لیکن ممبئی حملوں کے بعد اس طرح کا رسپانس نہیں تھا جس طرح کا اس بار دکھائی دیا.
حافظ محمد شاہد کو بھی انہوں نے نظر بند کیا، رکھے اور رحمان لکھوی کو دو تین سال رکھے اندر، لیکن نکلا کیا نتیجہ اس سے؟
ابھی بھی شنکا ہے پاکستان کی طرف سے.
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پردھان منتری نواز شریف اچھک ہیں کہ سمبندھ بہتر بنا ہے، لیکن ہر ایک انسان یہ جانتا ہے کہ وہاں دو شریف ہیں، ایک نواز شریف ہے اور ایک رحیل شریف ہے. اور یہ نہیں انیواریہ ہے کہ جو بھی نواز شریف نرنے کریں اس کے ساتھ دوسرے شریف سہمت رہیں گے.
جو یہ 15 جنوری کو جو ودیش سچیووں کی ملاقات ہونی ہے اس میں اب کیا کچھ خاص رہے گا اس ملاقات سے؟
میں سمجھتا ہوں کہ ودیش سچیووں کی ملاقات ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ راشٹریہ سرکشا صلاح کاروں کو ملنے چاہیے، جو جانچ کر رہے ہیں وہ گروپس کو ملنے چاہیے تاکہ یہ طے کیا جائے ابھی کہ وہ کیا سہیوگ چاہتے ہیں اور ہم کیا سہیوگ دے سکتے ہیں. اس کے پہلے جانا تو بس وہی راستے پر نکلیں گے جہاں ہم ممبئی کے بعد نکلیں.
پاکستان کے پورو راجدوت جی پارتھ سارتھی سے بات کر رہے تھے روہت جوشی. ہمیرا، آپ نے جی پارتھ سارتھی کی بات سنی، یہ بتائیے کہ پاکستان के अखबार जो हैं उन्होंने जो कल कार्रवाई की गई हैं, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उस पर क्या खबरें छापी हैं?
मेरे सामने इस वक्त अखबारात के वेब एडिशंस मौजूद हैं और लगभग तमाम अखबारात ने जो लीड ली है खबर, वो यही खबर है कि कल अदम जैश मोहम्मद के मुतअद्दिद कारकुन जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और दफातर को सील कर लिया गया है। वेब एडिशंस जो अखबारात के शाया होने से पहले पहले की जो खबर थी आज शब तक मैं देखती रही उसको, तो तब तक सवाए पाकिस्तान के अखबार द न्यूज़ और जंग उनके किसी ने इस बात को नहीं कहा कि मौलाना मसूद अजहर जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस वक्त जो एडिशंस हैं अखबारात के उनमें सब में यही खबर आ रही है कि उनको हिफाजती तहवील में ले लिया गया है। रोजनामा एक्सप्रेस की शेयर सुर्खी भी यही है कि पठानकोट हमला कल अदम जैश मोहम्मद के मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार दफातर सील। और अगर मैं अंग्रेजी रोजनामे की जानिब जाऊँ द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उसमें शेयर सुर्खी है पाकिस्तान कंसिडर्स सेंडिंग प्रोब टीम टू इंडिया, ऑफिशियल वर्ड्स ऑन टॉक्स एक्सपेक्टेड टुडे। इसके अलावा पाकिस्तान का बड़ा अखबार डॉन, उसने भी अपनी शेयर सुर्खी जो है वो इसी खबर से ली है, गवर्नमेंट टाइटन्स द स्क्रूज ऑन जैश, मसूद अजहर रिपोर्टेडली टेकन इनटू कस्टडी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैंने खुद जब रब्ता किया, ये मौलाना मसूद अजहर का जो मदरसा है और जहाँ उनकी रिहाइश है वो पाकिस्तान के शहर बहावलपुर में है, और जब मैंने पुलिस से रब्ता किया मुतलिका थाने में तो उन्होंने ये कहा कि वो इससे लाइल्म हैं। और अखबार में जो खबरें शाया हुई हैं उनमें भी इसी किस्म की इंडिकेशंस मिल रही हैं कि अगर तो उनको तहवील में लिया गया है या किसी कारकुन को गिरफ्तार किया गया है तो ये पुलिस की कार्रवाई नहीं, ये शायद खुफिया इदारों ने ये कार्रवाई की है। और अब अगर सुबह होती है तो फिर हम जो पुलिस एहलकार ड्यूटी पे आते हैं उनसे शायद हमें कुछ नई बात मालूम हो सके कि क्या कोई ऐसी इंडिकेशन हुई, कोई कार्रवाई हुई, लेकिन अब तक ऐसी कोई पुलिस की जानिब से तस्दीक नहीं हुई है।
जी, इस तरह की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विस्तृत समाचार पत्रों की समीक्षा का, हुमैरा कंवल। और अब भारत का रुख करते हैं और देखते हैं कि भारत में जो छपने वाले अखबार हैं उन्होंने इस खबर को कैसे लिया है। मेरे साथ स्टूडियो में लाइव आ चुकी हैं हरिता। हरिता, आपने सुना कि हुमैरा बता रही थी कि वहाँ पर कुछ अखबारों ने छापा है कि मौलाना मसूद को जो है कस्टडी में ले लिया गया है, और आज ये भी कुछ अखबारों ने कहा कि आज फैसला ले सकते हैं विदेश सचिवों की बातचीत पर। भारतीय अखबार क्या कहते हैं?
भारतीय अखबारों में भी मुख्य रूप से यही खबर सबसे टॉप पर चल रही है। ज़्यादातर अखबारों ने इसी को टॉप लाइन बनाया है। पठानकोट का मास्टरमाइंड अजहर हिरासत में, जैश के दफ्तर सील, अमर उजाला ने ये हेडलाइन दी है। हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है कि पाक की कार्रवाई, जैश सरगना मसूद अजहर गिरफ्तार। तो मौलाना के भाई समेत आतंकी संगठन से जुड़े 13 लोगों को पकड़ा और कई दफ्तरों को सील किया। तो गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन मुझे दिख रहा है। और दैनिक जागरण ने लिखा है, रंग लाया मोदी का दबाव, पाकिस्तान ने की बड़ी कार्रवाई, अजहर काबू में। जागरण ने एक जो और चीज़ लिखी है वो ये कि अजहर को भारत लाने की होगी कोशिश, तो इस पर भी फोकस किया है जागरण ने। और एनबीटी मतलब नवभारत टाइम्स ने, उसने भी इस चीज़ को प्रमुखता से लिया है, मसूद अजहर हिरासत में और पाक से वार्ता पर आज होगा फैसला। तो आज भारत में भी हम इस तरह की खबरें पढ़ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान विदेश सचिवों की जो बातचीत 15 जनवरी को प्रस्तावित है उस पर आज भारत भी फैसला कर सकता है। और नवभारत टाइम्स में इसी खबर से आगे इस ले जाते हुए लिखा है कि आपसी तालमेल से लिया एक्शन, ये कहा है थल सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह ने। पठानकोट हमले के दौरान आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में सभी एजेंसियों के साथ तालमेल के साथ ये काम किया गया। और एक खबर जो इसमें जोड़ी गई है, ज़्यादातर अखबारों ने जोड़ी है, जैसे नवभारत टाइम्स ने जोड़ी है कि पाक पर उंगली उठाई ओबामा ने, तो अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चेताया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देश नए आतंकी नेटवर्क के लिए पनागा बन सकते हैं। तो एक तरह से ये संकेत देने की जैसे कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान पर चारों तरफ से दबाव बढ़ रहा है,
जैसे कि हमने जी पार्टी को भी सुना। जी, समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरिता।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, सुशीला सिंह से। 2003 में मारे गए बीजेपी के नेता हरन पांड्या की पत्नी जागृति पांड्या को गुजरात सरकार ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया है। राज्य सरकार के इस फैसले को काफी चौंकाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि जागृति पांड्या 2003 से लेकर अब तक अपने पति हरन पांड्या की मौत को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राज्य बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाती रही है। जागृति का आरोप था कि उनके पति की राजनीतिक बदले की भावना से हत्या हुई। हालांकि इस हत्या के मामले में की सुनवाई सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने हरन पांड्या को गोली मारने वाले हैदराबाद के असगर अली समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन जब ये मामला गुजरात हाईकोर्ट तक पहुंचा, हाईकोर्ट ने सीबीआई की कार्रवाई की निंदा करते हुए सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया था। इसे लेकर जागृति पांड्या काफी नाराज थी। रोहित जोशी ने इस मामलों पर जागृति पांड्या से बात की।
बारे में शायद आपको पता ही है कि हरन पांड्या जी थे, उनका भी हमेशा भारतीय जनता पार्टी से ही लगाव रहा है। वो जब तक जिए और उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ ही शुरू हुआ था और अंत भी उन्हीं के साथ ही जुड़ा हुआ रहा है। तो आपको पता है कि हम कब भारतीय जनता पार्टी से हम कभी अलग तो थे ही नहीं।
आपके जो आरोप थे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य बीजेपी के नेताओं पर, क्या आपकी ओर से अब भी वो आरोप बरकरार है?
जो भी बातें मैंने भी की है, वो जो कायदा जुडिशरी का जो मैटर था वो एक अलग चीज थी। जो भी जजमेंट आ रहा था उसी हिसाब से मैंने अपनी बात रखी हुई थी, अब तक की जो बात थी। और जुडिशरी जो है वो एक अलग बात है, एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग बात है। तो हम कभी पार्टी से तो कभी हम अलग थे ही नहीं। और शायद 12 साल का मेरा वो भी एक रहा है कि मैंने कभी और कुछ ऐसे हरन पांड्या जी के सिद्धांतों के खिलाफ तो मैंने कभी अपनी बात रखी ही नहीं है।
तो हाईकोर्ट ने जब सभी अभियुक्तों को इस मामले में बरी कर दिया था, तो आपने गुहार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि इस पर फिर से विचार किया जाए। तो अभी ये मामला पेंडिंग चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो इस मामले में जो आपका मत था, क्या अभी भी आप उसी के साथ हैं?
जुडिशरी मैटर वो अभी वहाँ पे उस बारे में तो जब तक जजमेंट नहीं आए तब तक तो मैं कुछ कह नहीं सकती।
जागृति पांड्या से बात कर रहे थे रोहित जोशी। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से में पोंगल त्यौहार के अगले दिन मनाए जाने वाले जल्लिकट उत्सव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए जल्लिकट को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इस अधिसूचना के लिए एनिमल वेलफेयर ऑफ इंडिया की सहमति नहीं ली गई थी। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने जल्लिकट पर से प्रतिबंध हटाए जाने को लेकर असहमति जता दी। अब इस मुद्दे पर जो है राजनीतिक हलचल वहां हो रही है। पूरी रिपोर्ट के साथ इमरान कुरैशी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बहुत से लोग खुश भी हैं और कई लोग नाराज भी हैं। जहां एक तरफ कुछ लोगों का मानना है कि इससे जानवरों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर रोक लगेगी, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इस फैसले से खुश नहीं हैं वो मानते हैं कि इस तरह का निर्णय पारंपरिक संस्कृति पर अत्याचार है। जिस जल्लिकट पर इतनी बहस छिड़ी हुई है, असल में ये है क्या? मैंने तमिल पंडित तो परमशिवम से ये जानना चाहा, तो ये बताते हैं। जल्लिकट का मतलब है सांड से चिमटना और उसके सिंग में बना हुआ सोने का सिक्का निकाल लेना, और यह 30 गज के अंदर करना होता है। यह बहुत पुरानी पारंपरिक संस्कृति है। ये थे तो परमशिवम के शब्द। सांड को एक बाड़े से ढकेल कर बहुत सारे युवकों के बीच छोड़ दिया जाता है, जो सांड के सिंग में लगे सोने के सिक्के को निकालने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ दशकों से सांड के आंखों में लाल मिर्ची भी लगाया जाना शुरू हुआ है, साथ ही उसे शराब भी पिलाई जाती है जिससे सांड और जोर से भागे। गांधीग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय के तमिल साहित्य के असिस्टेंट प्रोफेसर सुंदर काली कहते हैं, इसमें जानवर को यंत्रणा देने की बात सरासर गलत है। कोई लोग सांड को शायद शराब पिलाते होंगे, जैसे थोड़े एथलीट दोपन लेते हैं, लेकिन जल्लिकट पर रोक लगाने से सांड की नस्लों के पालन पर जरूर गहरा असर पड़ेगा। ये थे सुंदर काली के शब्द। जल्लिकट पर लगाए गए रोक से राजनीति पर क्या असर होगा? हमने यह सवाल मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर सी लक्ष्मण से पूछा। उन्होंने कहा, इस साल तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए हर कोई जल्लिकट के पक्ष में है, क्योंकि जल्लिकट ना तो एक खेल है ना ग्रामीण त्यौहार। ये एक जाति गौरव का सार्वजनिक प्रदर्शन है, इसीलिए कोई राजनीतिक पक्ष जालीकट के खिलाफ नहीं बात करेगा। ये थे सी लक्ष्मणन के शब्द। हालांकि इससे राजनेताओं की परेशानियां तो बढ़ेगी और वे सुप्रीम कोर्ट को दोष देंगे, लेकिन माट पोंगल के अवसर पर जालीकट नहीं होगा तो शायद सांड और महिलाओं की परेशानियां कुछ कम होगी। सांड पर अत्याचार नहीं होगा और महिलाओं को जख्मी पुरुषों की देखभाल भी नहीं करनी होगी। शायद इससे एक शांतिपूर्ण पोंगल मनाया जाएगा। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
और आज किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर, जान लेते हैं हरिता कांडपाल से।
भारत पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत पर भारत आज फैसला कर सकता है। बुधवार को पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर की गिरफ्तारी की खबरों के बाद सबकी नजरें इसी बातचीत पर टिकी हुई थीं। लेकिन समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के पेरिस से लौटने के बाद इस पर फैसला हो सकता है। 15 जनवरी को ये बातचीत प्रस्तावित है। गुजरात में पटेल अनामत आंदोलन समिति के नेता हार्दिक पटेल पर देशद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस को हार्दिक पटेल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दायर करने का आदेश दिया था। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि अगर चार्जशीट दायर नहीं की गई तो हार्दिक पटेल को जमानत मिल सकती है। नेट न्यूट्रलिटी के मुद्दे पर भारत के टेलीकॉम नियामक ट्राई के पेपर पर अपनी टिप्पणी देने का आज आखिरी दिन है। जीरो रेटिंग प्लान और टेलीकॉम कंपनियों के कुछ वेबसाइटों के लिए कम दरों पर इंटरनेट देने के मुद्दे के बीच जहां देश भर में बहस छिड़ी हुई है, ऐसे में ट्राई ने एक परामर्श पर्चा जारी किया था जिसमें विविध दरों के मुद्दे पर राय पूछी गई थी। उत्तरांचल की राजधानी देहरादून से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा आज से शुरू हो रही है। केदारनाथ में कुछ समय पहले आई भयंकर बाढ़ से काफी नुकसान हुआ था। भारत दक्षिण कोरिया बिजनेस फोरम की आज से शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज इसमें हिस्सा ले सकते हैं। पाकिस्तान की कबड्डी टीम आज भारत आ रही है। पाकिस्तान की टीम अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आज भारत पहुंच जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 15 जनवरी से हरियाणा के फरीदाबाद में शुरू हो रहा है, जिसमें 12 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। वैश्विक डोपिंग विरोधी एजेंसी वाडा आज म्यूनिख में डोपिंग के मामले में अपनी रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा जारी करने जा रही है। इस रिपोर्ट के पहले भाग में रूस में संस्था द्वारा प्रायोजित डोपिंग को उजागर किया गया था, जिससे रूस की काफी किरकिरी हुई थी। रिपोर्ट के दूसरे भाग में एथलेटिक्स की वैश्विक संस्था IAAF के अधिकारियों के आचरण पर टिप्पणी किए जाने की उम्मीद है, जिससे संस्था की साख को धक्का लग सकता है। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आज इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट मैच शुरू होगा। इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से आगे है। पिछले टेस्ट के बाद कप्तान हाशिम आमला ने इस्तीफा दे दिया था। अब दक्षिण अफ्रीका की टीम एबी डिविलियर्स की कप्तानी में मैदान पर उतर रही है। दक्षिण अफ्रीका के मुख्य गेंदबाज डेल स्टेन कंधे में लगी चोट की वजह से नहीं खेलेंगे।
तो आज किन खबरों पर रहेगी हमारी नज़र, बता रही थी हरिता कांडपाल। और श्रोताओं, आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे कि समय के अभाव के चलते हम मकर संक्रांति पर विशेष रिपोर्ट आपको नहीं सुना पा रहे हैं। अगले प्रसारण में ज़रूर सुनाने की कोशिश करेंगे। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। भारत पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बातचीत पर भारत में आज हो सकता है फैसला। तुर्की के मीडिया के मुताबिक दियारबाकिर प्रांत में सिनार जिले में एक कार बम धमाका हुआ, जिसमें एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई है। इस धमाके में 22 लोगों के घायल होने की खबर है। हमले के पीछे कुर्द संगठन PKK का हाथ बताया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत पिछले 12 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत $30 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। अमरीका ने इराक में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए विशेष ऑपरेशन बल तैनात करने की घोषणा की है। फ्रांस के एल्प्स पर्वतों में भूस्खलन में फ्रांस के 2 स्कूली छात्र और यूक्रेन के 1 पर्यटक की मौत हो गई है। कुवैत में शिया मुस्लिम सांसदों ने शिया और बहुसंख्यक सुन्नी मुस्लिम समुदायों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार को कुवैत में बड़ी संख्या में शिया मुसलमानों पर सामूहिक रूप से मामला चलाया गया, जिसमें 2 शिया मुसलमानों को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि कई लोगों को जेल की सजा दी गई। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे 8 बजे सुबह दोबारा होगी विश्व भारती में मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत।